कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, 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 कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो।
बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। ईश्वर स्वरूप के अंतर्गत भगवान का सर्वशक्तिमान स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। प्रथम प्रसंग स्वामी जी महाराज ने राम सत्य स्वरूप है, राम ज्ञान स्वरूप है, राम आनंद स्वरूप है, राम सर्वशक्तिमान है, राम प्रेम स्वरूप है, राम मुनिजन अनुभूत वस्तु है। इनके अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया हुआ है। भक्तजनों रूप एवं स्वरूप में संत महात्मा अंतर मानते हैं, ये एक ही नहीं है। रूप तो बाह्य आकार को कहा जाता है, लेकिन स्वरूप भीतरी गुणों को कहा जाता है। जैसे मिश्री का आकार गोल भी होती है, दानेदार भी होती है, चिपटी भी होती है, ये तो उसका रूप हो गया, मिश्री का आकार हो गया। लेकिन स्वभाव, चाहे वह गोल है, दानेदार है या चपटी, स्वभाव मिठास रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूप बाह्य आकार को कहते हैं और स्वरूप भीतरी गुणों को कहा जाता है। भगवान के भीतरी गुणों का वर्णन ईश्वर स्वरूप के अंतर्गत स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। भगवान श्री सर्वशक्तियों के मालिक हैं, अतएव उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अनेक सारी शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां, कुछ से हम परिचित हैं, जैसे इच्छा शक्ति है, उनके नियंत्रण की शक्ति है। अभी आपने पढ़ा तीन लोक हैं, कभी आपस में इन लोकों को टकराते हुए किसी ने नहीं देखा न सुना, तो कितना नियंत्रण है इन लोगों के ऊपर। ये भगवान की नियंत्रण शक्ति है, इच्छा शक्ति है, नियंत्रण शक्ति है, सारे जहान को नियामक रखने की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, अद्वितीय, कोई मुकाबला ही नहीं है। जितनी भी शक्तियां हैं भगवान में, परमात्मा में, अद्वितीय हैं, उनका कोई पैरेलल नहीं है। उनकी दया करने की शक्ति, अतिशय करुणावान हैं वे, करुणा निधान उन्हें कहा जाता है, करुणा निधि उन्हें कहा जाता है। इन सारी शक्तियों में से भगवान की कृपा शक्ति सर्वोपरि है। इससे बढ़ के भगवान के अंदर कोई और शक्ति नहीं है, ऐसा संत महात्मा विशेषतया भक्ति मार्ग के अनुयायी इस बात को मानते हैं। उनकी कृपा शक्ति सर्वे सर्वा है एवं सर्वोपरि है। कृपा करने की शक्ति, भगवान का कृपा करना स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है तेज प्रदान करना, मांगना नहीं पड़ता उनसे तेज, उनसे प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, स्वभाव है। चंद्रमा का ज्योत्सना देना स्वभाव है, उनसे चांदनी मांगनी नहीं पड़ती, शीतलता मांगनी नहीं पड़ती चंद्रमा से। मेघ का स्वभाव है बरसना, उसे बरसना ही बरसना है। वे नहीं देखता कि ये गरीब का घर है या अमीर का, या महल है या झोंपड़ी, उसे बरसना ही है, उसका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का भी स्वभाव ही है कृपा करना। भक्तों, फिर भी बेशक ठंडे नगर जो हैं, ठंडे देश जो हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनका स्वभाव है ठंडक देना, लेकिन ठंडक पाने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा वहां पर। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का स्वभाव है कृपा करना, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके चरण शरण में तो आपको जाना ही होगा, ये शर्त मत भूलिएगा। आप चंद्रमा ज्योत्सना प्रदान कर रहा है, लेकिन आप अपना घर द्वार सब बंद करके भीतर बैठे हैं, तो आप उसकी शीतलता से, उसकी चांदनी से वंचित रह जाओगे। आपका मकान किसी इस गली मोहल्ले में है जहां ऊंचे ऊंचे मकान है, तंग गली है, जहां सूर्य का प्रकाश कभी गलती से भी नहीं जा सकता, तो दोष सूर्य का नहीं है। वह तो अपना तेज सबको प्रदान कर रहा है, वह तो अपनी रोशनी सबको प्रदान कर रहा है। भूल आपकी है कि आपने मकान गलत जगह पर लिया हुआ है, जहां रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। पुराने नगर जाओ, बड़ी उच्च ऊंचे मकान हैं, तंग गलियां हैं, जहां रोशनी आती नहीं, दिन को भी अंधकार ही रहता है, तो दोष देवी सूर्य का नहीं है। प्रश्न उठता है देवी सज्जनों, यदि परमेश्वर का स्वभाव है कृपा करना, तो सब कुछ जाननहार है, हमारे दुख को जानता है, सुख की बात छोड़िएगा, हमारे दुखों को जानता है, हमारे ऊपर कोई संकट आया हुआ है उसे जानता है, रोग असाध्य आ गया है उसे जानता है, मुकदमा आ गया है अचानक उसे जानता है, सर्वज्ञ है वह, सर्वशक्तिमान, उसकी जानने की शक्ति सर्वज्ञ कहा जाता है, सब कुछ जानने की शक्ति। वह पिछला भी जानता है, अभी का भी जानता है, आगे का भी जानता है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, और सबका जानता है। ऐसा नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति का ही जानता है, दूसरों का नहीं जानता, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वह सिर्फ भारतीयों का ही जानता है और जो विदेश में अमेरिका में रहने वाले हैं उनका नहीं जानता, नहीं, ये सत्य नहीं है। वह सर्वज्ञ है, सबका, भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है एवं भविष्य भी जानता है। भगवान के लिए इसलिए कहा जाता है, उसके लिए ना कोई भूत है ना कोई भविष्य है, सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान है। वह सबका सब कुछ जाननहार है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस बेचारे को व्यापार में घाटा ही घाटा पड़ रहा है, क्या नहीं जानता वह? वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह व्यापारी किसी भी काम को हाथ डालता है उसमें उसे घाटा पड़ के रहता है। घर में खाने को नहीं है, क्या वह नहीं जानता? वह सर्वज्ञ किस काम का, यदि जानता है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वह हमारा संकट दूर नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि वह हमारे दुखों को हर नहीं सकता, वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि उसे दया नहीं आती हमारे ऊपर, आप उसे परम दयालु कहते हो। आओ देखो इन सारी शक्तियों का समन्वय, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वह हमारे ऊपर क्या घटित हो रहा है, क्या प्रतिकूल कितना घटित हो रहा है, वह सब कुछ जानता है। क्या उसे हमारे ऊपर दया नहीं आती? उसकी सर्वज्ञता किस काम की? वह परम दयालु है, उसे दया भी आती है, और यदि दया नहीं आती तो फिर परम दयालु वह किस काम का? नहीं, वह परम दयालु है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसमें समर्थ नहीं है कि हमारे दुख दूर कर सके, हमारे संकट दूर कर सके, हमारे घाटों को ठीक कर सके? यदि नहीं तो फिर उसे सर्वसमर्थ क्यों कहा जाता है, उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? उसमें यह भी समर्थ है। साधकों संत महात्मा यहां समझाते हैं, वह सर्वज्ञ भी है, वह परम दयालु भी है, वह सर्वसमर्थ भी है। सब कुछ हमारे लिए इन सारे गुणों का प्रयोग करके, सदुपयोग करके हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हमारी आदत ही पड़ गई हुई है रोने की, हमारी कृपा को ना देखने की आदत सी बन गई हुई है। हमारा स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव क्या है और हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, हमें आदत ही इस प्रकार की हो गई हुई है रोते रहने की। इतनी कृपाएं हैं उसकी, हम उन्हें अनदेखी कर देते हैं, तो परमेश्वर इस बात से बहुत दुख महसूस करता है। कैसा कृतज्ञ व्यक्ति है, मैंने इसे जिंदगी में क्या नहीं दिया, लेकिन इसने कभी मेरे दिए हुए की कदर नहीं की। बेकदरा है, ना शुक्रा है। शास्त्र ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए बहुत घृणित शब्द प्रयोग करता है। ऐसे कृतघ्न व्यक्तियों के पाप अपराध क्षमणीय नहीं है, वह गली मोहल्ले रुलने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। देवियों एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं। आपका नन्ना पुत्र है, आप उसे सर्दी है गर्मी है उसे नहलाते हो, सुबह जल्दी जल्दी नहीं नहलाते, ठंड है अभी। कल्पना कीजिएगा सर्दी का मौसम है, आप उस नन्ने को जल्दी जल्दी नहीं नहलाते, थोड़ा धूप निकलाए, पानी गर्म करेंगे फिर नहलाएंगे। माँ ऐसा ही करती है, आराम से उसे उठाती है, उसे बाथरूम में ले जाती है, पानी गर्म टेस्ट करती है, पानी ठीक है ना, कहीं बहुत गर्म तो नहीं या ठंडा तो नहीं, तो उसके अनुकूल बना लेती है। गर्म और डालने की ज़रूरत है तो गर्म डालती है, ठंडा और डालने की ज़रूरत है तो ठंडा डालती है, मानो पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आप उसे बाथरूम में ले जाती हैं किस काम के लिए? यही ना, पसीने की बू आ रही होगी, कुछ गंदगी है उसे धोने के लिए। सर्दी हो या गर्मी, पानी गर्म है या ठंडा, आप कुछ भी कर लो माताओ, आप सब मेरे साथ सहमत हो, बच्चा तो रोता ही है। मानो जैसे कि माँ उस बालक की पिटाई कर रही हो, आप उस पर पानी डालती हो, साबुन लगाती हो, साबुन निकालती हो, उसकी सफाई कर रही हो, आप उसे सजा नहीं दे रही, आप उसे पीट नहीं रही, आपकी करुणा है कि आप उसकी गंदगी को धो रही हैं, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे रही, लेकिन वह रो रहा है। ये इस बालक का स्वभाव ही हो गया है। यदि बाथरूम का द्वार बंद है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे की दादी बाहर आवाज सुनती है तो बहू को डांटती है, अरे बहू क्या कर रही है, मुन्ना क्यों रो रहा है। मानो बहू का दोष उसे दिखाई दे रहा है। बच्चे का स्वभाव बन गया हुआ है। मां का स्वभाव है कृपा करना, बच्चे का स्वभाव है रोना। जारी रखेंगे भक्तों में इस चर्चा को और आगे आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।